अब अगली आयत में चूंकि जिना की सजा है, मुझे डर लग रहा है कि इधर मैंने इसका तर्जमा आपके साथ दोहराया, उधर आपके दिमाग में आना है हाँ ये कोई दीन है, देखो इतनी सख्त सजाएं। चूंकि सूरत का आगाज सजाओं से हो रहा है तो इतराजात शुरू हो जाते हैं। और अगर ये सारी बातें जो मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि ना करूँ, ये किए बगैर अगर आपको मैं पढ़ा दूँ कि अज़ानिया तो वज़ानी फजली दुकुल्लवाहिदिम मिन हुमा मिया तजल्दा, कि जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द दोनों में से हर एक को 100 100 कोड़े मार दो। और वला ताखुज़कुम बिहिमा रअफ़तुम फ़ी दीनिल्लाह, और तुम्हें ना रोके इनके साथ मेहरबानी अल्लाह के दीन को नाफिज करने के मामले में। इन कुंतुम तूमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम ईमान रखते हो यौम आखिर पर और अल्लाह पर, तो आप में से कई लोगों के दिमागों में क्वेश्चन आएगा कि ये इतनी सख्त सजा क्यों, और इस पे और सोने पे सुहागा कि वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, कि जो जानी को सजा देनी है, जानिया को वो अकेले में नहीं देनी, कम अज़ कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 जितने भी लोग हैं उनके सामने दो। अब देखिए इसमें तो इतराज़ बरा इतराज़ इतना कुछ दिमाग में आने लग गया, तो फिक्र लग जाती है कि कहीं हम लोग जो यहाँ सवाब की नज़र से और हिदायत की नज़र से पढ़ने बैठे थे, उन्हीं के दिमागों में कुछ क्वेश्चन ना आ जाएं। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम थोड़ी सी बात पहले कर लें, ताकि हमें पता चले कि इस्लाम का मिजाज कैसा खूबसूरत है, एकदम किसी चीज़ को नाफिज नहीं करता। और चूंकि सजाओं पे बात हुई है, तो आज के दौर पर इस्लाम पर जो हमले हैं ना, उसमें एक बड़ा हमला तो इस्लामी सजाओं। आज के दौर में मुसलमानों को जो कहा जाता है, अमूमन क्या कहा जाता है आपको सबको पता है, मैं दोहरा देती हूँ, शिद्दत पसंद है, टेररिस्ट है, बारबेरिक है, रुज्जत पसंद है, और बहुत ही ज़्यादा सख्त लोग हैं। सुनिए कभी ये बातें,
जी बिल्कुल,
इस्लामी शरीयत के नफाज की जब भी कभी किसी मुसलिह ने कोशिश की, तो एतराज़ गैरों से ज़्यादा अपनों की तरफ आता है कि इस्लामी सज़ाएं वहशियाना है, चोर का हाथ काटो, तोबा तोबा, देखो जिना क्या हो गया, छोटा सा अमल बेचारों से भोलपन में मासूमियत में, और कहते हैं उसको 100 कोड़े मारो, होता कि नहीं होता। तो वजह क्या है, पहली बात लिखिए कि आज मुसलमानों को जो ये गलत नाम दिए जाते हैं उसकी वजह सबसे पहली लाइल्मी, लोगों को इस्लाम का इल्म ही नहीं है। फिर दूसरी इसकी वजह है गाफिल और ला इल्म मुसलमानों का अमल, जिन्होंने इस्लाम के निफाज का आगाज़ भी किया तो सज़ाओं से किया, एकदम जाके लोगों को बता दिया कि इस ये सज़ा है उसकी वो सज़ा है, हालांकि इस्लाम का मामला ये नहीं है। तीसरी एक वजह क्या है, इस्लाम से बुग़्ज़ और दुश्मनी। अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं इंसानियत अंधेरों में डूबी हुई है, कुफर तो अंधेरे का नाम है, तुम पहले उनको इस्लाम की खूबसूरती दिखाओ, गैर मुस्लिमों तक ये नूर पहुंचाने के लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। अब देखिए कि किसी भी चीज़ की असल कब पता चलती है, जब आप उसको जानते हो। आज लोग इस्लाम को कितना ही बुरा क्यों ना कह दें, इस्लाम बुरा नहीं बनेगा इंशाल्लाह। वजह क्या कि इस्लाम इज़ पीस, कोयले को हीरा कह दें, हीरे को कोयला कह दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आज उन हाथों की ज़रूरत है आप जैसे लोगों के, इस्लाम के चेहरे पे जो लगे हुए दाग हैं इनको मिटा सके। आज अपनी रियलिटी के अतबार से नॉन मुस्लिम भी मान चुके हैं कि इस्लाम के कवानीन बेहतरीन है। अल्लाह ताला ने यहाँ ये बातें बयान करके हम सबको बता दिया कि पहले अपने दिल की ज़मीन में अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करो। जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को देखेंगे उतना बात आसान होगी। तो इस्लाम का स्टाइल समझ लीजिए, बात आसान हो जाएगी। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, उससे ही सारी बात समझ आ जाएगी। एक जगह कहीं गड़ा है, खाई है, और पतला सा ऊपर रास्ता बना हुआ है, लोगों को पता नहीं चलता कि इधर खाई है। जो बंदा जाता है वो ना समझी में नीचे देखे बगैर नीचे घुसता है और उस खाई में गिर जाता है। अब एक इमेजिनेशन में आप पिक्चर बना लें, अब जो गया गिरा, किसी को चोट लगी, किसी की टांग टूटी, किसी की हड्डी टूटी, अब हुकूमत क्या करती है? एक हुकूमत है, वो क्या करती है, उस खाई के पास एक एम्बुलेंस खड़ी कर दे कि जूं ही कोई गिरेगा उसको एम्बुलेंस में डाल देंगे, चलो भाई अच्छी बात है, बर वक्त इलाज हो जाएगा। एक उससे भी समझदार हुकूमत है, वो उसी के करीब उस दूसरे किनारे पर एक हॉस्पिटल बना देती है जहाँ टूटी हुई हड्डियों का इलाज होता है, ठीक है ना। लोग गिरते जाते हैं, वो एम्बुलेंस में डाल के उसको निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं। ये है एक तरीका का। एक तीसरी हुकूमत है, वो कहती है कि इस सारे काम की ज़रूरत क्या है, क्यों ना किसी तरह से इस खाई को बंद कर दिया जाए, मुमकिन नहीं है तो रास्ता बदल दिया जाए, और अगर ये दोनों ही नहीं मुमकिन तो फिर क्यों ना लोगों को अवेयर किया जाए, यहाँ कुछ साइन बोर्ड लगाए जाएँ, कुछ रोशनियाँ रखी जाएँ, कुछ टॉर्च लगाए जाएँ, एरो लगाए जाएँ, कोई कैट आइज लगाई जाएँ, कि जो आए वो पहले से कॉन्शियस हो, नीचे से बता दिया जाए कि आगे एक खड्डा आने वाला, ठहर जाओ, बच जाओ, ताकि लोग वहाँ केयरफुल गुजरें। आप मुझे बताइए कि तीनों में से कौन सा तरीका ठीक है? आखिरी ठीक है। तो इस्लाम का तरीका ये आखिरी है, लिख लें। इस्लाम प्रिवेंटेशन सिखाता है, प्रिवेंट सिखाता है, पहले ही कहते हैं उन रास्तों से ना गुजरो। हम सूरत बनी इसराइल पढ़ चुके, ला तकरबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ, वहाँ आपको बताया तिना कुरबात ज़िना। इस्लाम वो सारे मैयर्स लेना सिखाता है जिसके बाद दुनिया में इनडिसेंसी फैलती है, जिसमें आप देख सकते हैं हम ये मज़मून कहाँ से पढ़ रहे हैं, सूरत निसा की आयत नंबर 14 से, कि जो औरतें बाहर फैलाएं गंदगी उनको घर में बंद कर दो। आप देखिए सूरत निसा में हल्का सा इस पे बात हुई, फिर उसके बाद हमने सूरत अल आराफ में लिबास की बात पढ़ी, न्यूडिटी से मना किया गया, शैतान के तरीके हैं, लिबास गलत कराता है, लिबास कपड़े अच्छे पहनो, उसकी बात हमने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद आप देखिए कि हम लोगों ने सूरत अल अनाम में बहुत सारी ऐसी आयतें पढ़ी जिसमें फुखश और मुनकर से रोकने की बात की गई, और फिर आगे हमने सूरह बनी इसराइल में जिना की कुरबात पढ़ी। आज हम सूरत नूर में दोबारा ये मौजू पढ़ रहे हैं। इतनी दफ़ा ये बातें पढ़कर आपको क्या समझ आया कि अगर जिना ख़त्म करना चाहते हो तो बेहयाई ख़त्म कर दो, बेहयाई ख़त्म करना चाहते हो वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दो जिससे जिना फैलता है। मक्की सूरतों में इसका अहतमाम हुआ, सूरत मारिज अगर आप पढ़ें, जिसमें मुसलमानों की बातें की गई कि जो बहुत ही समझदार लोग हैं, वल्लज़ीन हुम ली फुरूज हम जो हाफिज हूँ। अभी हम पीछे सूरत मोमिनून में क्या पढ़ चुके हैं, 10 सिफात 10 आयतों के अंदर मोमिनों की एक सिफत पढ़ी थी ना कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। तो पता क्या चला कि अगर जिना ख़त्म करना है तो दुनिया से वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दो जो इसका रास्ता खोलती हैं। इस्लाम को जिना से बहुत बैर है, वजह क्या है, क्योंकि आप जिना की आयत सख्त है तो उससे पहले समझिए। तो जैसे बेसिक ह्यूमन राइट्स का नारा सुना होगा ना अपने आज के दौर में, 5 बेसिक ह्यूमन राइट्स है, जिसमें सबसे पहले ही कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसका जो दिल जाता है जाके बोले, कोई नहीं पीछे पड़ सकता। नुकसान क्या हुआ, बदतमीज़ी फैल गई। इस्लाम के 5 बेसिक राइट्स हैं, ये लिख लीजिए, मुश्किल लफ्ज़ से मैं कोशिश कर रही हूँ आसान लफ्ज़ों में बोलूँ, यानी इनको 5 बुनियादी मकासद शरिया कहते हैं। सबसे पहला ये कि इस्लाम चाहता है कि हमारी जान का तहफ़ हो, कोई किसी की जान ना ले, ठीक है, तहफ़ जान। इस्लाम ने इसके लिए क्या किया, कसास पढ़ चुके हैं पीछे, कत्ले ख़ता भी पढ़ चुके, दूसरा भी पढ़ चुके, ठीक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर से पुलिस का महकमा शुरू हो गया था, इंसान तो इंसान है, जानवरों के हकूक भी दिए जाते थे उस दौर में, आपको पता है। हज़रत उमर का दौर पढ़िए, मैंने इस वीक स्पेशली उनके हालात सुने। शहादत हुसैन मनाने वालों को नहीं पता कि उमर की शहादत भी मुहर्रम में हुई थी, जो इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन बहरहाल किस्सा मसरी के हज़रत उमर के दौर से ये शोभा शुरू हो गया था, ह्यूमन राइट्स भी थे, एनिमल राइट्स भी थे, हत्ता के लोग घर बनाते हुए दूसरे हमसाए से पूछे बगैर घर की दीवार नहीं उठा सकते थे, ठीक है। दूसरा, इस्लाम एक और तहफ़ देता है लोगों को, और वो कह के उनका माल महफूज रहे, माल का तहफ़, उसके लिए इस्लाम ने चोरी की सज़ा रखी। कोई किसी के माल पर नज़र डालता भी है तो क्यों डालता है, और हाथ बढ़ा लिया कतईयत, सूरत मायदा में पढ़ चुके, हाथ काट दो, कितना काटो जितना काटना, डिटेल्स गुजर चुकी। तीसरा, इस्लाम जो श्योरिटी देता है ना लोगों को, वो कहता है अक्ल का तहफ़, लोगों का ब्रेन ठीक काम करे, इसके लिए शराब को हराम कर दिया, शराब बिल्कुल मना कर दी गई, क्योंकि शराब से इंसान की अक्ल ख़राब होती है, 40 से लेकर 80 कोड़ों तक की सज़ा दे दी। फिर इस्लाम लोगों की इज्जत की तहफ़ चाहता है और नस्ब की इज्जत चाहता है, इसके लिए जिना को हराम करार दिया। इस्लाम में इस बात की बहुत इम्पोर्टेंस है कि जब कोई बच्चा पैदा हो तो उसको अपनी माँ का नाम, बाप का नाम, नानी, दादी, खाला, फुफ्फो, मामू सब का बताओ। फितरत के साथ है कि बच्चे को पैदा होते ये सारी मोहब्बतें मिलें। जिना होता क्या है, अगर इसकी लीगल टर्म लिखनी हो तो लिख लें, वही ताल्लुक जो शौहर बीवी का शादी के बाद हो वो शादी से बगैर हो जाए, इन लीगल ताल्लुक। और बिल्कुल इसके अल्फाज भी इतने खुले होते हैं कि ज़ुबान पे नहीं आते, लेकिन सिंपल वो हर काम जो शादी से पहले अलाउड नहीं, उसको किसी के साथ लिविंग टुगेदर के नाम पर, ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड के नाम पर, उसको मॉडर्न होने के नाम पर, उसको किसी भी नाम पे कह दें, इस्लाम उसको जिना कहता है। और याद रखिए, ये सिर्फ इस्लाम ही दुश्मन नहीं है। मेरे पास एक पूरी बुक थी, मैंने एक मौके पे उस पर दर्ज भी पूरा दिया डिटेल के साथ, डॉक्टर फजल अली साहब की बुक है, कभी आपको मौका मिले ज़रूर पढ़ें। उसका नाम ही जिना, और उसकी हुरमात और उसके सद्देबाप और ज़राए, पूरी हिस्ट्री उन्होंने उसमें लिखी है कि ज्यूस बाइबल में यानी यहूद के दीन में कैसे जिना हराम था, और नसारा क्रिश्चियन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तो आज भी कॉल मिल जाता है ऐसे लोगों के बारे में कि किसी औरत को शहवत की यानी लस्ट की नज़र से देखना ये आंखों का जिना। और कमीनी औरत का नाम आता है बाइबल में जिनाकार औरत के लिए। ये वो लोग जिन्होंने आज इसको लाइफस्टाइल बना दिया। आज हमारे बच्चे जब ये चीज़ें बाहर देखते हैं तो कहते हैं अफसोस, ऑफ्स, मैं क्यों मुस्लिम हुई। क्या मुस्लिम होने का मतलब है कुछ कर ही नहीं सकते? तो भाई अगर आप सही क्रिश्चियन होते अब तब भी नहीं कर सकते थे, और अगर आप सही ज्यूज घर में पैदा होते अब तब भी नहीं ये काम कर सकते थे। इवन पेगन कल्चर, देखिए हिंदू कल्चर पेगन कल्चर है ना, वो तो किसी का भी नहीं ना, अल्लाह के सिवा जिसका भी, उनमें भी ये चीज़ें हराम है। आप उनके भी ज़रा बुनियाद परस्त हिंदुओं पे और उनके बड़े फोर फादर्स पे जाएं, और हम लोग तो इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा हुआ तो हम तो बहुत साल साथ रहे, कभी आपने उनकी औरतों को पर्दा करते, चादरें सर पे रखते, साड़ियों के पल्लू रखते नहीं देखा? पहले दौर में वहाँ सब था। आज सिर्फ एक दीन है, सिर्फ ओनली वन रिलीजन जो जिना और उसकी कुरबात को हलाल करार देता है, वो कौन सा दीन है? ना क्रिश्चियन, ना ज्यू, ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना बुद्ध, और वो दीन है ख्वाहिश का दीन। ख्वाहिश प्रस्त मुसलमान, ख्वाहिश प्रस्त ईसाई, ख्वाहिश प्रस्त क्रिश्चियन, ज्यू, हर दीन के सिर्फ लस्ट लविंग लोग वो जिना और बेहयाई को अलाउड और पसंदीदा करार देते हैं, बाकी हर फितरी मज़हब पे जो लोग मौजूद हैं वो जिना को बुरा समझते हैं। जिना और शिर्क एक साथ है, अभी पढ़ लेंगे आप अगली आयत में कि जहाँ जानिया और मुशरिका का नाम इकट्ठा आता है, और पीछे भी पढ़ चुके हैं आप लोग सूरह बकरा में इसका इशारा। क्यों? शिर्क अल्लाह के साथ बेवफाई है, मुशरिक अल्लाह के साथ बेवफाई करता है, और जिना करने वाली लड़की या लड़का अपने लाइफ पार्टनर के साथ खयानत करते हैं। आप कहते हैं वो तो है ही नहीं, अभी अभी तो हम अनमैरिड है। जितनी खयानतें की, जितने लीगल ताल्लुकात रखे, वो आने वाले शौहर की हक तलफी है। और एक लड़का भमरा बन के जितनी जगह पे गया, उसने आने वाली ज़िंदगी में पाक दामन औरत जो उसको मिली उसके साथ खयानत की, तो इस्लाम इसको नापसंद कर देता है। क्यों नापसंद करार देता है? इसलिए कि इसमें नसब बिगड़ जाता है, आने वाले बच्चे को पता ही नहीं है कि मैं किसका बच्चा हूँ। और ऐसी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, छः छः बच्चों की माँ बनने वाली औरत भी कहती है कि मुझे आज तक शादी के काबिल कोई मर्द ही नहीं मिला, और हर कल्चर का बच्चा उसके साथ है, कोई गोरा, कोई काला, कोई नीग्रो, कोई कुछ, वो कहती है अभी तक वो मर्द मिला ही नहीं। आज क्यों मज़हब का खाना खाली कर दिया गया फॉर्म्स में से, और आज वेस्ट में पलने वाले बच्चे इस बात के गवाह हैं कि आप बच्चों को जब किसी स्कूल में दाखिल करते हैं तो बहुत सारी जगहों पे पेरेंट्स की किस्म पूछी जाती है। आर दे डाइवोर्स पेरेंट, तुम्हारे पेरेंट्स डाइवोर्स्ड हैं, आर दे मैरिड और अनमैरिड, तीनों में से ये किस्म लिखनी पड़ती है। और कई ऐसे फॉर्म्स हैं आज वेस्ट में कि जहाँ बाप का खाना ख़त्म कर दिया गया। औरतें कहती हैं हम तुम्हें क्या बताएं, हमें तो खुद नहीं पता। क्यों ऐसी बातें आप सुनते हैं कि 20 साल की होने तक एक लड़की 4 से 5 पार्टनर बदल चुकी होती है? ये सारी खराबियाँ इस खूबसूरत आयतों और सूरतों को आम ना करने की। आप देखिए कि जिना के साथ मुआशरे में इतनी खराबियाँ पैदा होती हैं, इतना नुकसान होता है कि इसका असर बेहतरीन फैक्ट्री यानी घर को ख़राब करता है, शौहर बीवी के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, انسان برداشت ہی نہیں کرتا کہ میرا پارٹنر کسی اور طرف نظر ڈالے، فطرت خراب ہو جاتی ہے، معاشرتی برائیاں خراب ہوتی ہیں، شادی شدہ زندگی ہے تو وہ برباد ہو جاتی ہے۔ جن مردوں میں ایسی گندگی کی عادتیں پڑتی ہیں پھر ان کا دل ہی نہیں خوش ہوتا اپنی سیدھی سادھی بیویوں کے ساتھ۔ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زنا کا اثر ہر چیز پہ جاتا ہے، جیسے بیماریوں میں کچھ بیماریاں ہیں نا، کچھ ایسی ہیں صرف وہی عضو خراب ہوتا ہے جس سے وہ بیماری ہوتی ہے، کچھ بیماری ایسی ہیں جس سے سارا جسم متاثر ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے اسلام نے کیا کیا، نکاح آسان کیا، چھوٹی عمر کی شادی، طلاق کا راستہ کھول دیا۔ کہ بعض اوقات شادی صحیح جگہ نہیں بھی ہوتی تو یہ نہیں کہ ساتھ رہتے رہو اور تعلقات کہیں اور رکھو، نہیں، پھر طلاق کا راستہ بھی ہے۔ پھر اسلام نے موسیقی کو حرام کیا کیونکہ اس سے اشتہا پھیلتی ہے۔ گانے جتنا انسان کو زنا پہ مائل کرتے ہیں اتنا کوئی دوسری چیز نہیں کرتی۔ ساز، میوزک، تھر تھرانے کو دل جاتا ہے، پھر اسی سے خرابیاں ہوتی ہیں۔ جہاں شراب ہوگی وہاں میوزک ہوگا، وہاں زنا بھی ہوگا۔ آپ کسی نائٹ کلب کا سوچیں، تصور کیا آتا ہے، یہی سب کچھ ہے نا۔ کبھی آپ کو دن کی روشنی وہاں دکھے گی، کبھی وہاں لوگ قرآن پڑھتے دکھیں گے، وہ فل سلیوز اور کورڈ کپڑے پہنتے ہوئے اور لوز ڈریس پہنے ہوئے دکھیں گے، وہ تو برباد ہو جائے گا، وہ تو بینک کرپٹ ہو جائے گا ادارہ۔ شراب بھی آپ کو آتا ہے اس لیے حرام ہے، آپ کو آج اندر کی بات بتا دوں، شراب بھی اس لیے حرام ہے کہ اٹ لیڈس ٹو زنا۔ شراب میں مت ماری جاتی ہے، ماں بہن کا فرق نہیں پتا، بیٹی کا فرق نہیں پتا۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ شراب کے نشے میں باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ غلط تعلق قائم کرتے ہیں، بھائی بھائیوں کے ساتھ تعلق خراب کرتے ہیں۔ اور ایک ویسٹرن رپورٹ میں سن رہی تھی کہ جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اگر اپنے گھروں کو پاک کرنا چاہتے ہو تو بہنوں کے بھائیوں سے بستر الگ کر دو۔ یہ نان مسلمز کی آوازیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا 7 سال کا ہونے پہ اپنے بچے کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہونے پہ اس پہ سختی بھی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ دو بھائی بھی ایک بستر میں نہ سوئیں، بہنیں بھی نہ سوئیں، بھائی بہن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ معاشرہ ٹھیک ہو۔ جہاں یہ سب کچھ ہو گیا، ساری پیش بندیاں ہو گئیں، تو اس معاشرے میں تو زنا ہونا ہی کوئی نہیں۔ آپ خود سوچیں نا، آج کے ماحول کو دیکھیں اور یہ سزا سوچیں کہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارو تو تصور میں آتا ہے ہر گلی کی نکڑ کوڑے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی آتا ہے نا۔ اسلام جس معاشرے میں آتا ہے، نبی کا دور دیکھ لیجیے، کتنوں کو تاریخ کے 2-4 واقعات ہیں جو حدیثوں میں آج ہی موجود ہیں۔ غامدیہ عورت، مائز اسلمی ایک صحابی تھے، اسی طرح ایک عورت نماز کے لیے صبح مسجد گئی اور راستے میں ایک مرد نے اس پہ حملہ کیا اور اس کی عزت خراب کی، وہ واپس آئی، اللہ کے نبی کے پاس آئی اور اس نے مقدمہ دائر کیا۔ تو آپ نے پھر اس مرد کو تو ہاتھ لگائی لیکن عورت کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ مجبور تھی، کہ آج کسی پہ ریپ ہو تو اس کا کیا معاملہ ہے۔ یعنی یہ ساری حد بندیوں کے بعد صرف اکا دکا 2-3 واقعات آپ کو پوری نبوی زندگی میں ملتے ہیں۔ عمر ابو بکر کے دور کی تو مجھے تو کوئی مثال نہیں ملی، ہوں گی تو کہیں ایسی ہوں گی جو ہوں گی۔ اس کے برعکس آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ چند رپورٹ کی باتیں سنا کے پھر آپ کو اس زنا کی جو تھوڑی سی ڈیٹیلز ہیں اس پہ بات کر دیتی ہوں، کہ آج کے دور میں جن معاشروں کو ہم سویلائز معاشرے کہتے ہیں اور جو اتنا شور کرتے ہیں اس ہمارے اسلام کے خلاف، آج یہی تو پرسیپشن دے دیا نا لوگوں کو کہ بس جی اسلام بیکورڈ ہے اور ہم بہت مشہور ہیں۔ تو یہ چند رپورٹس ہیں، آپ سن لیجئے، اگر آپ نے پہلے نہیں سنی تو پھر فائدہ ہوگا، نہیں تو دوبارہ سن لیجئے۔ شکاگو ٹریبنل 1992 سے 1993 کے ایک رپورٹ ہے کہ 313,600 ریپ ایک سال میں رجسٹر ہوئے، اور اس میں 12 سال سے کم عمر کے بچے شامل نہیں ہیں، اس کو الگ گنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پیڈوفیلیا، بچوں کی عزت پہ حملہ کرنا، آج کے اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ آج بچوں کو سیکشلی ابیوز کیا جاتا ہے، ٹیچرز کے ہاتھوں، اسکول میٹس کے ہاتھوں۔ ایف بی اے کی ایک رپورٹ ہے 1995 کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ 100,000 میں سے 700 لوگوں پر ریپ ہوتا ہے ایک سال میں۔ 20-30% عورتیں جسمانی تشدد کا شکار کی گئیں، جن میں سے 1 ملین علاج کے لیے نکلتی ہیں اور ان کو شیلٹر ہومز میں رکھا جاتا ہے۔ گریڈ 7 یعنی 7% بچیاں جو گریڈ 5 میں پڑھتی ہیں، یعنی 5ویں کلاس میں پڑھنے والی بچیوں میں، ہر 100 میں سے 7 بچیوں پر جنسی حملہ ہو چکتا ہے، جس میں 34% ان کے فیملی ممبرز کرتے ہیں، 58% ان کے ملنے جلنے والے لوگ جو انکل اور آنٹس اور ان کے بچے ہیں، اور 7% ہیں جو غیروں کے ہاتھوں ابیوز ہوتی ہیں۔ یہ ان کے فگرز ہیں، یہ ہم نہیں بول رہے، یہ خود بتاتے ہیں، یہ آپ کو بھی مل جائیں گے، آپ جہاں جا کے سرچ کریں آپ کو ہر سال کی رپورٹ الگ مل جائے گی۔ ہر 6 میں سے 1 عورت پر جنسی حملہ ہوتا ہے۔ अमेरिका में हर 2 मिनट में किसी न किसी एक औरत पर जिंसी हमला होता है। 20 में से 12 साल से कम उम्र वाले होते हैं, यानी छोटी उम्र वालों पे ज़्यादा हमले होते हैं। और आप अगर ये सारी बातें सुनने के बाद दिल में ये ख्याल लाएं कि ये सारा हो रहा है, तो फिर ये उसको बुरा समझते हैं। ये सब वो है जिसको वो क्राइम कहते हैं। आप लिखिए क्रिमिनल रिपोर्ट ऑफ USA 1914, 1920, 32, 2014, लंबी लंबे आपको लिस्टों के लिस्टें मिल जाएंगी। इसमें वो नहीं है जिसको जान के मर्जी से साथ रहना, जिसको वो कहते लिविंग टुगेदर, शी इज़ माई बॉय गर्लफ्रेंड, ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, ये नहीं है। इसको वो कहते हैं जायज़ है। और अगर आपको सीरत का वो सेशन याद होगा जो बिल्कुल पहला शुरू के एक आध सेशन में किया था कि नबी सल्लम की आमद से पहले अरब के जो हालात थे, तो उसमें ये बताया था कि वहाँ जिना की जो किस्में थी उसमें एक जायज़ थी, और वो ये थे कि लड़की लड़का अपनी मर्जी से साथ रहे, लड़की राजी लड़का राजी तो क्या करे काजी, ये हालात है। उसको वो भी जायज़ कहते थे जिसको आज ये कहें। सिर्फ ये उसको सेक्शुअल अब्यूज़ कहते हैं जिसमें दूसरे की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। आप इसकी अगर रिपोर्ट्स पढ़ें तो आपको हैरत होगी ना कि जिन मुल्कों ने अपने आप को सिविलाइज्ड, एडवांस, तरक्की याफ्ता का हबल बन गया, बहुत अच्छे भी काम किए। देखिए आज हम जब इन मुल्कों की ये गलत चीज़ें पढ़ते हैं तो हम परेशान होते हैं, हम कहते हैं इन्होंने तो दुनिया को बहुत कुछ दिया। वाकई दिया, इसमें झूठ भी नहीं है। बात तो वो कहें ना जो सच हो। आज आप देखिए कि अगर वेस्ट को, वेस्ट से मुराद कोई मुल्क नहीं है, आज मेरी नज़र में वेस्टर्न भी एक सोच है और ईस्टर्न भी एक सोच है, दैट्स इट। चाहे पाकिस्तान के गांव में रह के वेस्टर्न बन जाए, और अल्लाह की तौफीक से आप दुनिया के किसी एज पे भी पहुंच जाएंगे तो वहां भी आप ईस्टर्न रह सकते हैं। लेकिन आज इनके अच्छे काम है, एजुकेशन बहुत है, लिटरेसी रेट इनका 98% से ज़्यादा है, चांद पे पहुंच गए, हबल बना लिया, रिसर्च कर ली, इनकी रिसर्च करता चीज़ें गैजेट, ये आईफोन, ये फलां, इसे इस्लाम फैल रहा है। आपके व्हाट्सएप पर वाइबर किसने ईजाद किए, और ये गूगल किसका कारनामा है, और ये फायरफॉक्स किसने बनाई, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसकी है, ये सारी गौरों की है, अच्छे काम कर रहे हैं। आज उनकी की हुई रिसर्च से फ़ायदे उठाकर लोग मुसलमान हो रहे हैं, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक वो चीज़ें साबित हो रही हैं। अच्छे काम बहुत किए उन्होंने, बीमारियों का इलाज कर दिया, कई बीमारियाँ दुनिया से ख़त्म हो गई, नहीं अलग बात है और आ गई। पुलिस का आप कहते हैं इंतज़ाम बहुत अच्छा है, औरतों को बड़ी आज़ादी है, इक्वलिटी, लेकिन क्या इन सब कामों के बाद वहाँ का कॉमन मैन खुश है? आम इंसान को हबल से क्या मिला अगर उसको साफ पानी नहीं मिल रहा? इतने रिसोर्सेज अगर हजरत दाऊद के पास होते और सुलेमान के पास होते, पूरी दुनिया में गुर्बत ख़त्म और पानी साफ हो चुका होता, बीमारियां ख़त्म होती। इस्लाम के साथ दुनिया के रिसोर्सेज मिलते हैं ना, तो इंसानियत को नफ़ा मिलता है। और इन इस्लाम के बग़ैर ये रिसोर्सेज मिलते हैं तो चांद पे तो कमंदे हैं और अपने मुल्क के मसलों की फ़िक्र नहीं है। तो लिहाजा आज वहाँ देखिए बेगर्जी भी है, झूठ भी है, सब कुछ मौजूद है, खुश नहीं है, घर सुकून वाले घर नहीं है। एक औरत की मैं बात सुन रही थी कि कई हफ्ते में अपने बच्चे से मुलाकात नहीं कर पाती, सारा दिन जॉब से थकी हारी आती है, अपने बच्चे को कहती है रात को नहला धुला के तैयार करके सुलाती हूँ, और सुबह 4-5 बजे उस सोते बच्चे को उठा के डे केयर में छोड़ती हूँ, सारा दिन वहाँ मैं अपने जॉब पे रहती हूँ, वापसी पे जब उसको लेती हूँ वो फिर सोया होता है, घर आके एज इट इज़ उसको सुला के रात को एक दफ़ा फारिग करती हूँ, और इस तरह कई दिन के बाद मैं अपने जागते बच्चे से बात करती हूँ। कई ऐसे बाप हैं वो कहते हैं हम जाते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं, और जब अब्बा जी घर पर हैं तो बच्चे नहीं हैं। ये आम कहानी है, शौहर बीवी लिख लिख के बातें करते हैं, ये खुशी वाला माहौल तो नहीं होता, ये तो होम स्वीट होम नहीं है। इस्लाम क्या कहता है? इन सब से बरक्स एक सिंपल ज़िंदगी का तरीका। आप और मैं आज ये बात कह रहे हैं ना, लिख के रख लीजिए, हम शायद होंगे भी कि नहीं आज से 10-20 साल बाद, आप देखिएगा वापस वो सारा सिस्टम वेस्ट अपनाएगा जो इस्लाम ने दिया। हम तो छोड़ते जा रहे हैं, वो लेते जा रहे हैं, ये खबरें आम हैं। आपको मैंने पीछे एक बात सुनाई थी कि एक दफ़ा एक अमेरिका में किसी स्कूल में गई तो कहने लगी कि आज से 3-4 साल पहले जब मैं आई थी आपके स्कूल में तो वहाँ बच्चे और बच्चियाँ एक ही क्लास में बैठे हुए थे, आज आपने सेक्शन अलग क्यों कर दिए लड़कियों और लड़कों के? उन्होंने कहा इसलिए कि हमारा स्कूल तरक्की नहीं कर रहा था, हमारे रिजल्ट्स ख़राब थे। फिर हमने सब ने सर जोड़ के जब फैसला किया, देखा कि लड़के लड़कियाँ साथ बैठते हैं तो पढ़ने में तवज्जो नहीं देते, और जब से कहती हैं लड़कियों को अलग लड़कों को अलग किया तो हमारे स्कूल की कारकर्दगी अच्छी हो गई। ये उनकी रिपोर्ट्स हैं। वो कहते हैं कि जिस बैंक में या जिस इदारे में लड़कियां, लड़के, औरतें, मर्द इकट्ठे होते हैं वहाँ की कारकर्दगी कम हो जाती है, वो ज़्यादा वक्त अपने आप को शो ऑफ करने में और एक दूसरे से ताल्लुकात बढ़ाने में डाल देते हैं। یعنی اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اتنی قربت ہو جاتی ہے عورتوں اور مردوں کی آپس میں، جب وہ آپس میں ایئر ہوسٹنگ کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، فرق ہی ختم ہو جاتا ہے، ان کو فرق لگتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ جینڈر ڈسکریمنیشن تو رہی نہیں ہے۔ تو جب ہم اسلام کے نام پر خوبصورت اسلام لوگوں تک رکھتے ہیں، یہ سب کچھ جو اللہ نے دیا ہے اس کو دنیا کی ترقی کے ساتھ لاتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ آج وہ لوگ جو خود کو سویلائز کہتے ہیں، آپ دیکھیے کہ انسانی تشدد کے جتنے آلات ہیں یہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں بنتے ہیں۔ انہی کی رپورٹ ہے، ڈان کی ایک رپورٹ ہے 20 فروری 2001 میں ایک چھپی تھی، کہ انسانی تشدد کے جو آلات ہیں وہ تائیوان، چائنا، کوریا، اسرائیل، جرمنی، فرانس، یو ایس اے، میکسیکو، برازیل میں بنتے ہیں، اور یہ سارا پروگرام امریکہ میں ٹیونن ہوتا ہے، اور وہ ساری چیزیں اپنے ملکوں میں بین ہیں جو دوسری جگہوں بھیجتے ہیں کہ لوگوں پہ تشدد کرو۔ آخر یہ کہاں سے بنتی ہیں چیزیں؟ تو بات بہت لمبی ہو گئی، لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر ہمیں اسلام کا یہ مزاج پسند نہیں تو پھر ہمیں خود اپنے مزاج کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اسلام یہ صدا دیتا ہے۔